ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र
संपूर्ण पंचतंत्र में पहला तंत्र है मित्र भेद, और मित्र भेद की कहानियां आपके लिए लेके आई हूं मैं रिचा। तीसरी कहानी का नाम है दंतिल वैश्य और राजसेवक। वर्धमान नाम के एक नगर में दंतिल नाम का एक बहुत बड़ा धनपति सेठ सारे नगर का नायक बनकर रहता था। उसने अच्छी तरह परोपकार और राज्य के कार्य करके उस नगर के रहने वाले लोगों और राजा को प्रसन्न किया था। उसके सामने चतुर आदमी किसी ने कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। ये सच ही कहा गया है कि राजा का हित करने वाला जन साधारण में बदनाम होता है और देश का भला करने वाले को राजा त्याग देते हैं। इस बड़े विरोध के होने के कारण पर राजा और प्रजा दोनों का काम करने वाला मिलना बहुत कठिन होता है। कुछ समय बाद दंतिल का विवाह हुआ। उस अवसर पर उसने सारे नगर के रहने वालों तथा राजसभा के लोगों को बहुत सम्मान के साथ निमंत्रण देकर बुलवाया और भोजन वस्त्र आदि से उनका सत्कार किया। विवाह के बाद उसने रानियों सहित राजा को भी अपने यहाँ बुलाकर सत्कार किया, किंतु उस राजा के घर की सफाई करने वाले गोरम्भ नाम के राजसेवक को घर आने पर भी दंतिल ने अनुचित स्थान में बैठने के कारण धक्का देकर निकाल दिया। उस दिन से गोरम्भ लंबी सांस लेता हुआ अपमान के कारण रात को भी नहीं सोता था और सोचता रहता था कि किस तरह इस दंतिल पर राज कृपा को खत्म करूं, अथवा बेकार में इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ, मैं उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। किसी ने सच कहा है, जो किसी का कुछ अहित नहीं कर सकता वो निर्लज्ज यानी बेशरम बेकार में क्यों किसी पर क्रोध करता है। बहुत उछल कूद कर भी क्या एक चना भाड़ को फोड़ सकता है। एक दिन सुबह के समय जब राजा नींद में था, तब उसके पलंग के पास झाड़ू लगाता हुआ गोरम्भ बोला, अहो दंतिल ऐसा ढीठ है कि राजरानी का आलिंगन करता है। ये सुनकर राजा घबरा कर उठ गया और उससे बोला, गोरम्भ जो तुमने कहा क्या वो सच है? क्या महारानी को दंतिल ने आलिंगन किया है? गोरम्भ बोला, देव रात में जुआ खेलने के कारण मैं सारी रात जागता रहा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए पता नहीं कि मैं क्या कह गया। राजा ने ईर्ष्या के कारण मन ही मन कहा, ये हमारे घर में बेरोक टोक आने वाला है और दंतिल भी वैसे ही आता जाता है। हो सकता है कि इसने कभी महारानी का आलिंगन होते देख ही लिया हो, इसी कारण ये ऐसा कह रहा है। कहा भी है, मनुष्य दिन में जो इच्छा करता देखता या करता है उसकी आदत के कारण वो सपने में भी वही बोलता और करता है। और भी अच्छा या बुरा जो भाव मनुष्यों के दिल में स्थित रहता है वो गुप्त बात भी सपने की बात या नशे से पता चल जाती है। अथवा स्त्रियों के विषय में क्या संदेह है, वो किसी के साथ बोलती है, किसी को विलासपूर्वक देखती है और हृदय में बैठे अन्य पुरुष के विषय में विचार करती है। ऐसी हालत में स्त्रियों को कौन प्यारा हो सकता है? और फिर ये मुस्कुराहट युक्त एवं लाल होठों वाली स्त्रियां किसी के साथ खूब बातें करती हैं, खिले हुए कमल की तरह किसी को देखती हैं और विचित्र चरित्र तथा विविध संपत्ति वाले अन्य पुरुष का मन में ध्यान करती हैं। इन स्त्रियों का वास्तविक और सच्चा प्रेम किसके साथ होता है? किसी के साथ भी नहीं। और भी आग लकड़ी से, समुद्र नदियों से, काल सब प्राणियों से, और स्त्री पुरुषों से तृप्त नहीं हो पाती। एकांत नहीं मिलता, अवकाश नहीं रहता और प्रार्थना करने वाला मनुष्य नहीं मिलता। हे नारद, इसी कारण स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित रहता है। जो मूर्ख अज्ञान के कारण ये समझ लेता है कि अमुक स्त्री मुझसे प्रेम करती है, वो मनुष्य उसके वश में होकर खेलने वाला पक्षी बन जाता है। जो चतुर पुरुष स्त्रियों के साथ छोटी या बड़ी, थोड़ी या बहुत बातें करता है, वो सब प्रकार से छोटा हो जाता है। जो स्त्री की प्रार्थना करता, उसके पास जाता और थोड़ी भी सेवा करता है तो वो उसी की इच्छा करती है। प्रेमी मनुष्यों के न चाहने से और परिवार के लोगों के डर से मर्यादा रहित स्त्रियां मर्यादा में रहती हैं। इन स्त्रियों के लिए कोई अनुपयुक्त नहीं है, न इन्हें बुढ़ापे या जवानी की चिंता रहती है और न इनमें कुरूप या रूपवान की ही परख है। ये सिर्फ पुरुष के साथ भोग करती हैं। रक्त प्रेमी या लाल यानी कि रक्त पुरुष साड़ी के समान स्त्रियों के भोगने की चीज होता है। जो श्रेष्ठ हालत में निर्भर होता है अथवा जिस वस्त्र का नितंब में पड़कर घर्षण होता है, स्त्रियां जैसे लाख का रंग निचोड़ कर पैरों में लगाती हैं, वैसे ही अपने अनुरागी पुरुष को निचोड़ कर पैरों में डाल देती हैं। इस प्रकार राजा अनेक प्रकार से दुखी होकर उसी दिन से दंतिल से नाराज रहने लगा। बहुत क्या, राजद्वार में उसका प्रवेश भी बंद हो गया। दंतिल अचानक राजा को नाराज देखकर सोचने लगा, ओहो, किसी ने सच ही कहा है। धन पाकर कौन घमंडी नहीं हुआ? किस विषय पुरुष की परेशानी नष्ट हुई? धरती में स्त्रियों से किसका मन खंडित नहीं हुआ? राजा का प्यारा कौन है? काल का सामना किससे हुआ? कौन मांगने वाला पुरुष कुशलता से जी सका? कोई नहीं। और भी कहा है, कौवे में पवित्रता, जुआरी में सच, सांप में सहनशीलता, स्त्रियों में काम शांति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में तत्व चिंता, और राजा को मित्र रूप में किसने देखा, किसने सुना है? मैंने राजा का तथा अन्य किसी राज संबंधी का सपने में भी अनिष्ट नहीं किया, तब क्यों राजा मुझसे नाराज है? एक दिन दंतिल को राजद्वार में चुप खड़ा देखकर गोरम्भ हंसकर द्वारपालों से बोला, द्वारपालों, राजप्रसाद प्राप्त दंतिल खुद कृपा करने और न करने में समर्थ है, इसलिए इसको रोकने से मेरी तरह तुम भी धक्कों के भागीदार होंगे। ये सुनकर दंतिल सोचने लगा, ये जरूर ही इस गोरम्भ की करतूत है। ठीक ही कहा है कि कुलीन या मूर्ख कोई भी यदि राजा की सेवा करता है तो वो सम्मान से हीन पुरुष भी सब जगह पूजा जाता है। कायर और डरपोक मनुष्य भी यदि राजा का सेवक हो तो वो किसी से नहीं हारता। इसी प्रकार अनेक तरह से रोकर, शर्मिंदा मन और उद्वेग से प्रभावहीन होकर दंतिल घर गया। रात में उसने गोरम्भ को बुलाया, वहां दो कपड़ों से उसका सम्मान करके बोला, भद्र, मैंने तुमको क्रोध के कारण नहीं निकाला था। उस समय तुम ब्राह्मणों के आगे अनुचित स्थान पर बैठे थे, इसी कारण तिरस्कृत किए गए, इसीलिए क्षमा करो। स्वर्ग राज्य के समान कपड़ों आदि को प्राप्त करके परम संतुष्ट होकर गोरम्भ बोला, श्रेष्ठ, मैंने वो सब क्षमा कर दिया। इस सम्मान के बदले मेरी बुद्धिमानी और राजकृपा को देखो। ये कहकर और संतुष्ट मन से वो चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है, थोड़े से ऊपर को चला जाता है और थोड़े से ही नीचे झुक जाता है। तराजू की डंडी और दुष्ट की एक समान ही कोशिश होती है। दूसरे दिन गोरम्भ राजगृह में जाकर राजा को तारीफ करते हुए बोला, हमारे राजा की ये कैसी अज्ञानता है जो मल त्याग करते समय ककड़ी खाते हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्य से बोला, अरे गोरम्भ, क्या अनहोनी बातें कह रहे हो? घर का कर्मचारी समझकर तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, क्या तुमने कभी भी ऐसा करते मुझे देखा है? वो बोला, स्वामी, जुआ खेलने के कारण रात में जागने से झाड़ू लगाते लगाते अचानक मुझे नींद आ गई। नींद में होने के कारण मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल जाता है, इसलिए मेरे नींद के वश में होने के कारण आप नाराज न हो। ये सुनकर राजा ने सोचा कि मैंने तो जन्म जन्म में भी मल त्याग करते समय ककड़ी नहीं खाई, परंतु ये निरर्थक बात इस मूर्ख ने कह दी। इसी प्रकार दंतिल का भी आक्षेप झूठा है, यानी दंतिल पे लगाया हुआ दोष, मैंने ये अच्छा नहीं किया जो बेकार में उस बेचारे का सम्मान खत्म कर दिया। ऐसे पुरुषों की ऐसी कोशिश कभी भी नहीं हो सकती, उसके बिना राजकाज के सारे काम ढीले हो गए हैं। इस प्रकार विचार करके राजा ने दंतिल को बुलाया और अपने अंग के वस्त्र आभूषण आदि से सत्कार करके उसे पुराने पद पर नियुक्त कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो गर्व से पूछता है इत्यादि। संजीवक बोला, यदि ऐसा ही है जैसा तुमने कहा है तो मैं वही करूँगा। ये कहने पर दमनक उसको लेकर पिंगलक के पास गया और बोला, देव, मैं संजीवक को ले आया, अब स्वामी ही प्रमाण है। संजीवक उसको सादर प्रणाम करके विनय पूर्वक आगे बैठ गया। पिंगलक भी उसके मजबूत और बड़े कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखकर आदर से बोला, आप सकुशल तो हैं, इस सुनसान जंगल में कहां से आ गए? उसने भी अपनी कहानी बताते हुए जैसे वर्धमान से अलग हुआ था वो सब सुना दिया। ये सुनकर पिंगलक आदर पूर्वक उससे बोला, मित्र, मेरे भुजाओं से सुरक्षित होकर डरो मत, अब तुम स्वच्छंद घूमो और हमेशा हमारे पास रहो, क्योंकि बहुत दुखदायी तथा भयंकर जीवों से भरे इस जंगल में बड़े बड़े प्राणियों का भी जिंदा रहना मुश्किल है, फिर घास खाने वालों की तो बात ही क्या है। ये कहकर वो सारे हिरणों के साथ यमुना के किनारे आया और पानी पीकर स्वेच्छा से उस जंगल में प्रवेश किया। तब से कर्कट दमनक पर राज्य का भार डालकर पिंगलक संजीवक के साथ सुख का अनुभव करता हुआ रहने लगा। अचानक आए सज्जन का साथ अक्षय फल देने वाला होता है, वो बार बार अभ्यास के क्रम की अपेक्षा नहीं करता। अनेक शास्त्रों के सुनने से बुद्धि की चतुराई अधिक होने के कारण थोड़े ही दिनों में संजीवक ने उस मूर्ख बुद्धि के पिंगलक को इस प्रकार बुद्धिमान बना दिया कि वो जंगल के धर्म से अलग होकर ग्राम्य धर्म में लग गया। बहुत कहने से क्या, प्रतिदिन केवल संजीवक और पिंगलक एकांत में सलाह करते, बाकी सारे हिरण आदि दूर बैठे रहते थे। कर्कट दमनक को भी प्रवेश नहीं मिलता था। सिंह के शिकार ना करने के कारण सारे हिरन और वे दोनों सियार भी भूख से पीड़ित होकर एक किनारे हो गए थे। कहा भी है, हलहीन किंतु कुलीन और उन्नत राजा को भी छोड़कर सेवक दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे सूखे वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं। हमेशा सम्मान से युक्त कुलीन और भक्ति में तत्पर सेवक भी आजीविका न मिलने से स्वामी को त्याग देते हैं। और भी, अगर राजा वेतन देने का समय नहीं टालता तो दुत्कारने पर भी सेवक उसे नहीं त्यागते। इस प्रकार सेवक सारे संसार को परस्पर भक्षण के लिए साम आदि उपायों का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे के देशों पर राजा का, रोगियों पर वैद्य का, ग्राहकों पर बनिए का तथा मूर्खों पर पंडितों का प्रभुत्व रहता है। असावधानों पर चोरों का, गृहस्थियों पर भिक्षुकों का, कामियों पर वेश्याओं का और सब लोगों पर शिल्पियों का प्रभाव रहता है। वे साम दाम आदि जालों को फैलाकर रात दिन देखते रहते हैं और जैसे मेंढक आदि बादलों की प्रतीक्षा करते हैं, इसी प्रकार सब लोग उनकी शक्ति से जीवित रहते हैं। अथवा ये ठीक ही कहा है, सांप और दूसरे की वस्तुओं को हरने वाले दुष्टों के उद्देश्य पूरे नहीं होते, इसी कारण ये संसार टिका हुआ है। शिव जी का सांप भूख के कारण गणेश जी के चूहे को खाना चाहता है। उस सांप को कार्तिकेय का मोर और मोर को दुर्गा का वाहन सिंह खाने की इच्छा करता है। शिव जी के घर में भी जब ऐसी हालत है तो दूसरे के घर में क्यों नहीं होगी, क्योंकि परस्पर उपजीविका प्रधान संसार का ये स्वरूप ही है। इसीलिए स्वामी की कृपा से रहित तथा भूख से कमजोर कर्टक और दमनक आपस में सलाह करने लगे। दमनक बोला, अरे कर्टक, हम तो अब अप्रधान हो गए और पिंगलक संजीवक में लीन होकर अपने काम से विमुख हो गया। हमारे सारे परिजन भी चले गए, अब हम क्या करें। कर्टक बोला, हालांकि वो आपकी बात नहीं मानता, फिर भी दोष दूर करने के लिए स्वामी से कुछ कहना उचित है। कहा भी है, मंत्रियों को नहीं सुनने वाले राजा को भी समझना चाहिए, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को अपने दोष दूर करने के लिए समझाया था। और भी, घमंड में चूर राजा और हाथी के मतवाले हो जाने पर उनके पास रहने वाले और महावत निंदा को प्राप्त होते हैं। तुमने ही इस घास खाने वाले बैल को महाराज के पास पहुंचाकर अपने हाथ से आग लगाई है। दमनक बोला, ये सच है, इसमें मेरा ही दोष है, स्वामी का नहीं। कहा भी है, जीव विशेष भेड़ से युद्ध करके सियार, आषाढ़ भूति से हम और दूसरे के कार्य से दूत, ये तीनों अपने ही दोष से दूषित हुए थे। कर्टक बोला, ये कैसे। दमनक कहने लगा, चौथी कहानी, सन्यासी और धूर्त।
पंचतंत्र
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।